एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं नात्सुमे सुसेकी के बेहद मशहूर और गहरे उपन्यास कोकोरो की।
हाँ, कोकोरो सुसेकी, जिन्हें आधुनिक जापानी साहित्य का कह सकते हैं पितामह माना जाता है।
बिल्कुल, और उनका ये उपन्यास कोकोरो मीजी युग के बिल्कुल आखिरी दौर में लिखा गया। वो दौर मतलब 1868 से 1912 तक, जब जापान बड़ी तेजी से बदल रहा था।
हाँ, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, पुरानी परंपराएं और नए विचार टकरा रहे थे।
और ये उपन्यास उसी टकराव को, उसी उथल पुथल को दिखाता है। और ये शीर्षक भी कोकोरो, इसका कोई सीधा अनुवाद मुश्किल है।
सही कहा, हृदय, मन, आत्मा, मानवीय भावना का वो अंदरूनी सार।
बिल्कुल, तो आज हम इसी कोकोरो की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। कहानी क्या है, पात्र कैसे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है,
और खास तौर पे अपराध बोध, विश्वासघात, अकेलापन जैसे विषय, और ये सब उस मेजी युग के संदर्भ में कैसे जुड़ता है।
तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। कहाँ से शुरू होती है ये
कहानी? शुरू होती है कामाकुरा के समुद्र तट से। एक युवा यूनिवर्सिटी छात्र है हमारा वर्णनकर्ता, जिसका नाम हमें पता नहीं चलता।
हाँ, वो गुमनाम रहता है पूरी कहानी में।
उसकी मुलाकात होती है एक थोड़े बड़े, थोड़े रहस्यमय व्यक्ति से। वो उन्हें बहुत इज्जत से सेंसे बुलाता है, मतलब गुरु या शिक्षक।
और ये सेंसे शुरू से ही एक पहेली जैसे लगते हैं ना?
बिल्कुल, बुद्धिमान हैं, शांत दिखते हैं, गरिमामय भी, पर साथ ही एक गहरी उदासी है उनमें, एक अलगाव सा।
हाँ, और वो टोक्यो में अपनी पत्नी शिजू के साथ रहते हैं। शिजू खूबसूरत हैं, समर्पित हैं,
पर वो भी अपने पति के मन के अंधेरे से, उनके अतीत से पूरी तरह अनजान हैं।
वर्णनकर्ता सेंसे की तरफ खिंचता चला जाता है। टोक्यो में उनका मिलना जुलना बढ़ता है। वो सेंसे के ज्ञान से प्रभावित है, पर
इनकी वो उदासी, दुनिया से वो कटाव, ये उसे समझ नहीं आता।
और सेंसे की कुछ आदतें भी अजीब हैं, जैसे कोई नौकरी नहीं करते।
हाँ, और हर महीने नियम से अपने एक दोस्त के की कब्र पर जाते हैं।
और इंसानों पर, रिश्तों पर उनका भरोसा जैसे उठ सा गया है। वो कहते हैं प्रेम करने में पाप है,
या वो जो कहते हैं अकेलेपन के बारे में, कि अकेलापन वो कीमत है जो हमें इस आधुनिक युग में जन्म लेने के लिए चुकानी पड़ती है। ये बातें वर्णनकर्ता को और उलझा देती हैं।
यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस दुख की वजह क्या है? कौन सा राज है जो सेंसे को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है?
क्या हुआ था उनके अतीत में? कौन सा अपराध बोध है ये?
ये सवाल पाठक को भी जकड़ लेता है। और उपन्यास के बनावट भी कमाल की है। तीन हिस्सों में धीरे धीरे राज खुलता है।
हाँ, एक मनोवैज्ञानिक खोज की तरह।
और ये सब हो रहा है मेजी युग के अंत की पृष्ठभूमि में। ये समझना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, सेंसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो उस दौर के प्रतीक भी हैं।
सही।
वो पारंपरिक मूल्य और पश्चिमी व्यक्तिवाद के बीच का जो संघर्ष था,
सेंसे जैसे लोग उसी संघर्ष में पिस रहे थे।
और फिर वो घटना, सम्राट मेजी की मृत्यु और उसके फौरन बाद जनरल नोगी की आत्महत्या।
हाँ, जुनशी जैसे कहते हैं, अपने स्वामी के लिए जान दे देना, एक पुरानी सुमुराई परंपरा।
ये घटनाएं कहानी के क्लाइमैक्स के लिए, मतलब सेंसेई के अपने फैसले के लिए, एक तरह का माहौल तैयार करती हैं।
सही है।
जैसे एक युग का अंत हो रहा था और सेंसेई को लगा कि उन्हें भी उस युग के साथ चले जाना चाहिए।
और सेंसे का वो कथन अकेलेपन पर, कि ये आधुनिक युग की कीमत है जो स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अहंकार से भरा है,
वो सीधा उसी टकराव की बात कर रहा है।
हाँ, आधुनिकता ने व्यक्ति को आजाद तो किया, पर शायद अकेला भी कर दिया।
ये टकराव हमें उपन्यास के दूसरे हिस्से में और साफ दिखता है, मेरे माता पिता और मैं।
हाँ, जब वर्णनकर्ता ग्रेजुएशन के बाद अपने गांव लौटता है, उसके पिता बीमार हैं, प्राय मृत्युशया पर।
और यहाँ हमें वो अंतर साफ नजर आता है, टोक्यो का आधुनिक बौद्धिक माहौल और गाँव का वो पारंपरिक जीवन।
बिल्कुल, गाँव में बातें हो रही हैं विरासत की, जमीन जायदाद की, और वर्णनकर्ता के दिमाग में घूम रहे हैं सेंसे के वो गहरे अस्तित्व से जुड़े सवाल।
उसे अपने माँ बाप से एक दूरी महसूस होती है, भावनात्मक भी और बौद्धिक भी।
हाँ, पीढ़ियों का अंतर, मूल्यों का टकराव, एक तरफ परिवार के प्रति जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अपनी पहचान की खोज।
और इसी बीच तनाव बढ़ता जाता है, पिता की हालत बिगड़ रही है और वर्णनकर्ता को इंतजार है सेंसे के उस खत का,
जिसमें सेंसे ने अपने अतीत का राज खोलने का वादा किया था।
और फिर वो खत आता है, एक मोटा भारी लिफाफा और लगभग साथ ही एक टेलीग्राम भी।
टेलीग्राम में लिखा है, गंभीर रूप से बीमार हूँ, मिलना चाहता हूँ।
वर्णनकर्ता समझ जाता है, यह सिर्फ खत नहीं है, यह वसीयतनामा है।
हाँ, उसे लगता है सेंसे शायद मर रहे हैं
और वो एक मुश्किल फैसला लेता है, मरते हुए पिता को छोड़कर टोक्यो की ट्रेन पकड़ लेता है।
और ट्रेन में ही वो उस खत को पढ़ना शुरू करता है, उपन्यास का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा।
सेंसे और उनका वसीयतनामा, ये पूरा हिस्सा सेंसे का लिखा हुआ खत है वर्णनकर्ता के नाम।
सही मायनों में ये उपन्यास का दिल है, कुकुरो है, एक कच्ची दर्दनाक स्वीकारोक्ति।
इसमें सेंसे अपने अतीत की परतें खोलते हैं, शुरुआत होती है जवानी के दिनों से।
हाँ, जब उनके अपने ही चाचा ने जायदाद हड़प कर उन्हें धोखा दिया था।
इस धोखे ने उनके अंदर इंसानियत पर से भरोसा उठा दिया, एक गहरा अविश्वास भर गया।
इसी अविश्वास के साथ वो टोक्यो आते हैं, एक विधवा के घर रहने लगते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है ओजो-सान से,
विधवा की बेटी जो बाद में शिजु बनती है, सेंसे की पत्नी।
सेंसे ओजो-सान की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन फिर वो एक और गलती करते हैं।
वो अपने दोस्त के को मदद के लिए उसी घर में ले आते हैं। के जो होनहार है पर गरीब है,
और के कोई आम लड़का नहीं, वो बहुत सख्त सिद्धांतों वाला है, तपस्वी जैसा जीवन जीता है, दुनियादारी से दूर।
पर विडंबना देखिए, यही तपस्वी के भी ओजो-सान के प्रेम में पड़ जाता है।
हाँ, और एक बहुत ही कमजोर पल में वो अपनी ये भावना अपने दोस्त सेंसे को बताता है, उनसे सलाह मांगता है।
ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सेंसे जो खुद ओजो-सान से प्यार करते हैं, के की बात सुनकर ईर्ष्या से भर जाते हैं, डर जाते हैं।
हाँ, वो के को दोस्त नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं, प्रतिद्वंदी।
और सलाह देने के बजाय वो धोखा देते हैं।
वो चुपके से के को बताए बिना सीधे विधवा के पास जाते हैं और ओजो-सान का हाथ मांग लेते हैं।
और सगाई पक्की हो जाती है।
जब वो ये खबर के को देते हैं तो के कुछ नहीं कहता। उसकी वो खामोशी
वो किसी भी इल्जाम से ज्यादा चुभने वाली होती है।
के समझ जाता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और कुछ दिनों बाद वो आत्महत्या कर लेता है।
वो एक खत छोड़ता है जिसमें अपनी कमजोरी की बात करता है, पर सेंसे जानते हैं असल में वो खत उन्हीं के नाम एक अभियोग है।
बिल्कुल, ये अहंकार और नैतिकता की लड़ाई थी जिसमें सेंसे का डर और अहंकार जीत गया।
उन्होंने बाद में महसूस किया कि जैसे ही के ने अपने दिल की बात कही थी, उसी वक्त सब बदल गया था, भरोसे का खून हो गया था।
और वो घाव कभी नहीं भरा। के की मौत के बाद सेंसे का जीवन एक जीती जागती कब्र बन गया।
उन्होंने शिजु से शादी की, पर उनके बीच हमेशा वो रास खड़ा रहा, एक अदृश्य दीवार।
वो ये भयानक सच अपनी पत्नी को भी नहीं बता सके, डर था कि शिजु की नजरों में गिर जाएंगे।
और शिजु वो उस उदासी को, उस दूरी को महसूस करती रहीं, पर समझ नहीं पाईं। उनका प्यार सेंसे के उस अंधेरे तक पहुंच ही नहीं सका।
सेंसे की जिंदगी बस एक लंबी सजा बन गई, अपराध बोध और अकेलेपन की सजा।
और अंत में वो आत्महत्या का फैसला करते हैं।
इसका ट्रिगर बनती हैं वो घटनाएं, सम्राट मीजी की मृत्यु और जनरल नोगी का जुनशी।
हाँ, उन्हें लगता है कि जिस युग ने उन्हें बनाया, जिसके मूल्यों को उन्होंने तोड़ा, वो युग अब खत्म हो रहा है।
तो मीजी की आत्मा के साथ उन्हें भी चले जाना चाहिए। ये उनके लिए जिम्मेदारी लेने का, उस अकेलेपन को खत्म करने का एक तरीका था।
और साथ ही वर्णनकर्ता को एक सबक देने का भी। वो अपनी कहानी इसलिए सौंपते हैं ताकि
वर्णनकर्ता वो गलतियां ना करे। अपनी त्रासदी को एक चेतावनी बनाना चाहते हैं।
तो अगर हम मुख्य विषयों पर आएं, सबसे पहले तो अपराध बोध और विश्वासघात, ये उपन्यास की जान है।
हाँ, सोसे की दिखाते हैं कि कैसे एक भूल, एक नैतिक चूक पूरे जीवन को, हर रिश्ते को बर्बाद कर सकती है।
और दूसरा वो गहरा अकेलापन, अलगाव।
बिल्कुल, और सोसे की इसे सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि आधुनिक होने की कीमत की तरह दिखाते हैं। सेंसे अपने राज में अकेले, वर्णनकर्ता अपनी पीढ़ी के द्वंद्व में अकेला, के अपने आदर्शों में अकेला।
आधुनिक व्यक्तिवाद शायद हमें अकेला करता है।
तीसरा है वो युग का बदलना, मीजी से ताइशो। कोकोरो एक तरह से मीजी युग के लिए विदाई गीत जैसा है।
सेंसे की कहानी उस बड़े सांस्कृतिक संकट का आईना है, पुराने और नए के बीच फंसा हुआ इंसान।
फिर वो अहंकार और नैतिकता का संघर्ष जो सेंसे और के रिश्ते में दिखता है।
सोसे के आधुनिक सेल्फ पर सवाल उठाते हैं, जो अपनी इच्छाओं को जिम्मेदारी से ऊपर रखता है।
और एक और बात, ज्ञान का बोझ, क्या वाकई इग्नोरेंस इज ब्लिस?
हाँ, शिजु अपने अज्ञान में शायद ज्यादा सुरक्षित है, दुखी है पर टूटी नहीं।
जबकि सेंसे अपने सच के बोझ तले दबकर खत्म हो जाते हैं, और वर्णनकर्ता को भी ज्ञान मिलता है पर दुख और जिम्मेदारी के साथ।
उपन्यास की कहने की शैली भी बहुत प्रभावी है, पहले वर्णनकर्ता की नजर से रहस्य
और फिर सेंसे के खत से सीधी कच्ची सच्चाई, ये पाठक को अंदर तक खींच लेता है।
हाँ, वो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और वो धीमी गति माहौल को बहुत घना बना देती है।
कुछ प्रतीक भी हैं, जैसे के की कब्र, वो सेंसे के अपराध बोध का स्थायी निशान है।
और सम्राट की मृत्यु, वो सिर्फ एक राजा का अंत नहीं, एक युग का, एक सोच के अंत का प्रतीक है।
सेंसे का खत लिखने का मकसद भी साफ है। वो वर्णनकर्ता से कहते हैं, मेरा अतीत लो, उसके सारे अंधेरे के साथ, शायद ये तुम्हारे काम आए।
वो अपनी पीड़ा को अर्थ देना चाहते हैं, एक सबक बनाना चाहते हैं।
अगर पात्रों की यात्रा देखें तो वर्णनकर्ता मासूमियत से कड़वी सच्चाई और जिम्मेदारी तक पहुंचता है। वो अगली पीढ़ी है।
सेंसे वो दुखद नायक है, मीजी युग की पीड़ा और पतन के प्रतीक।
शिजु वो मासूमियत है जो परिस्थितियों का शिकार होती है, प्यार करती है पर समझ नहीं पाती।
और के वो आदर्शों का टूटना है, उसकी मौत सेंसे के लिए एक भूत बन जाती है।
कुकुरो पढ़ना एक गहरा बेचैन करने वाला अनुभव है, आप पात्रों से जुड़ जाते हैं।
हाँ, सेंसे के जीवन की व्यर्थता, शिजु का दुख, वर्णनकर्ता का बोझ, एक उदासी छोड़ जाता है ये उपन्यास।
बिल्कुल, ये हमें इंसान के मन के अंधेरों से रूबरू कराता है, उन रहस्यों से जो हमें बनाते भी हैं और मिटा भी सकते हैं।
ये सवाल खड़ा करता है, क्या प्रायश्चित मुमकिन है? दोस्ती और प्यार का क्या होता है जब अहंकार बीच में आ जाता है?
और इंसान बाहर से कितना अलग दिख सकता है उस तूफान से जो उसके अंदर चल रहा है।
कुकुरु हमें सिखाता है कि अतीत कैसे वर्तमान को जकड़ सकता है और आधुनिकता का अकेलापन कितना गहरा हो सकता है।
हाँ, ये मानवीय रिश्तों और नैतिक जिम्मेदारी पर सोचने को मजबूर करता है।
तो क्या सेंसेई की ये कहानी सिर्फ उस जमाने की है? क्या आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? क्या हम सब अपने अंदर के अहंकार और अपराध बोध से नहीं लड़ते?
ये सवाल तो बना रहता है, शायद इसीलिए कुकुरु आज भी इतना असरदार है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।